السلام علیکم، یہ پارٹ ٹو ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹو. اپنی کار ایک ایسی جگہ لے جا کر روک دی تھی کہ نہ مجھے ٹیکسی والا دیکھ سکے اور نہ کاک فلے. ٹیکسی جب کاک فلے کو لے کر روانہ ہوئی تو میں نے اس کا نہایت احتیاط سے تعاقب کرنا شروع کر دیا. کاک فلے ٹیکسی میں نیو ٹاؤن کی طرف گیا تھا. اس نے نیو ٹاؤن میں جاتے ہی ٹیکسی رکوا لی تھی اور پھر وہ ٹیکسی سے اتر گیا. اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور جب ٹیکسی وہاں سے چلی گئی تو وہ دوسری طرف مڑ کر ڈی بلاک کی طرف چلا گیا. اس نے چونکہ میری کار نہیں دیکھی تھی اس لیے میں کار آگے لے گیا تھا اور عقبی آئینے میں اسے بغور دیکھ رہا تھا. کاک پلے گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا. وہ ڈی بلاک کی ایک فرنشٹ کوٹھی کی طرف چلا گیا. اس کوٹھی کا نمبر 27 تھا. کاک پلے نے گیٹ کا لاک کھولا اور اندر چلا گیا. جس طرح سے وہ لاک کھول کر اندر گیا تھا اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوٹھی میں اکیلا ہی رہتا ہے. چنانچہ میں نے کار ایک سائڈ والی گلی میں روکی اور کار سے نکل کر کوٹھی نمبر 27 کے قریب آ گیا. کوٹھی بالکل نئی تھی، اس پر حال میں ہی پینٹ کیا گیا تھا. میں ابھی کوٹھی کے گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اچانک سامنے والی کوٹھی کا دروازہ کھلا اور تین افراد نکل کر تیزی سے میری طرف بڑھے. ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا ان تینوں نے دوڑ کر میرے قریب آ کر مجھے گھیر لیا. میں بھی انہیں دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ کوٹھی نمبر 27 کے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا اور کاک فلے مسکراتا ہوا باہر آ گیا. اس نے بڑے دوستانہ انداز میں میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا جسے مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہو. اس کے انداز اس قدر غیر فطری تھا کہ میں نے بھی بلا سوچے سمجھے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. اور پھر جیسے ہی میں نے اس سے ہاتھ ملایا اسی لمحے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا. مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میں نے پاور سپلائی کے کسی ننگے تار کو چھو لیا ہو. زوردار جھٹکے نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے اور میرے دماغ میں یکلف اندھیرا سا بھر گیا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں کوٹھی کے سٹنگ روم کی ایک سوفے پر پڑا ہوا تھا. میں بوکھلا کر اٹھا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن کوٹھی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. میں نے اپنی جیبیں چیک کی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کاک پلے نے میری تلاشی نہیں لی تھی. اگر لی بھی تھی تو اس نے میری کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی تھی. یہاں تک کہ میرا مشین پسٹل میں بھی میرے پاس ہی تھا. میں نے مشین پسٹل کا میگزین چیک کیا تو وہ لوڈڈ تھا. میں مشین پسٹل لے کر کوٹھی کا جائزہ لینے لگا لیکن کوٹھی ایسے خالی تھی جیسے وہاں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو. ساری کوٹھی خالی پڑی تھی اور جب میں باہر لان میں آیا تو مجھے وہاں چار افراد کی لاشیں پڑی ہوئی دکھائی دی. ان لاشوں کے جسم کے حصے الگ الگ کر دیے گئے تھے. ان کے ہاتھ پاؤں الگ تھے اور سر الگ. اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے اصلی کاک پلے جیسے تھے. کاک پلے کو شاید اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا. اس نے سیل فون سے کال کر کے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کر لیا تھا جو کوٹھی نمبر 27 کے سامنے والی کوٹھی میں چھپے میرے وہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر میرے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کوٹھی سے نکل کر مجھے گھیر لیا تھا. اور پھر کاک پلے نے مجھے الیکٹرک شاک لگا کر بے ہوش کر دیا. وہ چاہتا تو مجھے ہلاک کر کے وہیں پھینک سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کوٹھی میں تھا اور اس کوٹھی میں کاک پلے کی چار لاشیں موجود تھیں. میں حیران ہو رہا تھا کہ انہیں کس نے اور کیوں ہلاک کیا ہے. میں نے بلو کراس ویژن چشمے سے ان چہروں کو چیک کیا تو مجھے ایک اور حیران کن بات معلوم ہوئی. इन चारों के चेहरे असली थे, यानी वो मेकअप में नहीं थे। मेरे पास डबल ग्लास डिजिटल कैमरा भी था, जिससे किसी भी किस्म के मेकअप का आसानी से पता लगाया जा सकता था। लेकिन जब मैंने इस कैमरे से इन चारों चेहरों की तस्वीरें ली तो मैं और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि इन तस्वीरों में भी काकफल्ले का असली चेहरा ही मेरे सामने आया था। मैं एक काकफल्ले को जानता था, लेकिन वहाँ चार काकफल्ले की लाशें मौजूद थीं। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें किस कदर बेरहमी से किसने और क्यों हलाक किया है। काकफल्ले जैसा शैतानी दिमाग वाला एजेंट इस कदर आसानी से हलाक हो जाए, मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इस कोठी का जायजा लिया और अंदर बाहर हर जगह बारीक बीने से चेक किया, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा कोई क्लू नहीं मिला था जिससे मुझे ये मालूम हो सकता था कि काकफल्ले वहाँ क्यों आया था और इसकी जगह वहाँ चार काकफल्ले की लाशें कहाँ से आ गई थी। मैं अभी ये सब देख ही रहा था कि बाहर मुझे मोबाइल पुलिस के सायरन सुनाई दिए। कई गाड़ियां इस कोठी के गेट पर आकर रुकी थीं, इसलिए मैंने वहां से निकल जाना ही मुनासिब समझा और मैं कोठी के अकबी हिस्से की तरफ चला गया और वहां से दीवार फान कर बाहर आ गया। मैंने जिस गली में अपनी कार रोकी थी, कार इसी जगह मौजूद थी, इसलिए मुझे वहां से निकलने में कोई मसला नहीं हुआ था। मेरे लिए सब कुछ इस कदर हैरान कन था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सोच रहा था कि काकफल्ले के बारे में चीफ या मिस जूलिया को कुछ बताऊं या नहीं। ये सोचता हुआ मैं अपने फ्लैट में चला गया और फिर रात भर सोचता रहा, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। मैंने वर्कशॉप में मौजूद काकफल्ले की इस कार का नंबर भी नोट कर रखा था। मैंने इस मैकेनिक को फोन करके इस कार के मालिक के बारे में पूछा तो इसने मुझे बताया कि कार हमीद पीरजादा नामी एक शख्स की है। इस कार का इंजन सेज हो गया था, जिसे ठीक होने में वक्त लग सकता था, इसलिए हमीद पीरजादा नामी शख्स को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो एक हफ्ते बाद आकर अपनी कार ले जा सकता है। कार फिले की चार लाशें देखने के बावजूद मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वो हलाक हो चुका है, लेकिन मेरे पास इसके जिंदा होने का चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मैं चीफ से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता था। और मिस जूलिया को मैं ये क्या बताता कि मैं किस इस कदर आसानी से इनके हत्थे चढ़ गया था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम यकीनन काकफल्ले के बारे में जानते होंगे। मैंने तुमसे मिलने का फैसला कर लिया। मैंने सुबह अखबार देखा तो इसमें चार काकफल्ले की हलाकतों के बारे में छोटी सी खबर भी छपी हुई थी और इसकी तस्वीरों भी लगी हुई थी। मेरा ख्याल था कि तुम इन तस्वीरें को देख चुके होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस सिलसिले में तुमसे ही मिल लेना मुनासिब होगा। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया था ताकि तुमसे मशवरा कर सकूं। अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो, ये सारा चक्कर क्या हो सकता है? काकफल्ले ने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया था और मुझे इस कोठी में छोड़कर क्यों चला गया था, और वहाँ इसकी हम शक्लें चार लाशें होने का क्या मतलब हो सकता है? तनवीर ने नॉन स्टॉक बोलते हुए कहा, चक्कर तो वाकई अजीब सा है। तुम्हें पहचान कर इसने जिंदा छोड़ दिया, ये वाकई हैरत की बात है, क्योंकि तुम इसके दुश्मनों की लिस्ट में सर फहरिस्त हो। इसे मौका मिला था, वो तुम्हें आसानी से हलाक कर सकता था। खैर, इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इसने फिलहाल पाकिस्तान सेक्रेट सर्विस को छेड़ना या उनके खिलाफ एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा होगा और वहाँ से खामोशी से निकल जाना ही मुनासिब समझा होगा। लेकिन चार हम शक्लें लाशें, ये वाकई उलझा देने वाली बात है। अगर वो तुम पर ये साबित करना चाहता था कि तुम्हारे साथ इसके पीछे कोई और भी आया था और उसने काकफल्ले को हलाक कर दिया था, तो इसके लिए इसकी एक ही लाश काफी थी। फिर चार लाशें और वो भी इस हाल में कि इनके सर अलग हों और हाथ पांव अलग, इमरान ने सोचते हुए कहा। इसी बात पर बात से तो मैं हैरान हूँ, और इसराइल में जिस तरह काफिले मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, इसने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझे कहीं कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इसराइल से इसके हाथों बच कर निकल गया तो वो मेरे पीछे पाकिस्तान भी आएगा और मुझे ढूंढकर हर सूरत में हलाक करेगा। अब वाकई इसे एक बेहतरीन मौका मिल गया था, लेकिन इसने मुझे सिर्फ बेहोश किया था। वो जाता था तो इन चारों की जगह वहाँ मेरी लाश गिरा सकता था और वो भी टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, जिससे मैं वाकई बुरी तरह से उलझ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये वो काफिले ना हो जिससे इसराइल में मेरा मुतअद्दिद बार टकराव हुआ था। अगर ये वही काफिले होता तो वो इस तरह हाथ आए आसान शिकार को कभी भी जिंदा ना छोड़ता। तनवीर ने कहा, क्या तुमने दूसरी कोठी चेक की थी जहाँ से तीन मुसल्ला अफराद निकल कर आए थे, इमरान ने इससे पूछा। हाँ, वापस आने से पहले मैं इस कोठी में भी गया था, लेकिन वो कोठी भी खाली थी, वहाँ से भी मुझे कोई क्लू नहीं मिला था। तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर कहा, मुझे वो तस्वीरें दिखाओ जो तुमने डबल ग्लासेस डिजिटल कैमरे से ली थी, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर जेब से एक मिनी कैमरा निकाला। इस कैमरे के अकबी हिस्से में एक छोटी सी स्क्रीन थी। तनवीर ने कैमरा ऑन किया और फिर इसने फोटो वाला फोल्डर खोलकर इमरान को दे दिया। इमरान स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखने लगा जो तनवीर ने कॉक फिल्ले की लाशों और कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों की बनाई थी। तनवीर ने लाशों के तमाम अलग अलग अजाओं की तस्वीरें बनाई थी और कैमरे में दोनों कोठियों की बेशुमार तस्वीरें भी मौजूद थी। इमरान ने इन तस्वीरों को गौर से देखता रहा, फिर वो उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, तनवीर ने इसे उठते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। तस्वीरें बहुत छोटी हैं, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इन तस्वीरों को कंप्यूटर पर इनलार्ज करके देखना चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान उठकर दूसरे कमरे में चला गया और फिर वो तकरीबन आधे घंटे के बाद वापस आया तो इसके चेहरे पर थोड़ी संजीदगी दिखाई दे रही थी। इसके हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर था। इसने कंप्यूटर लाकर तनवीर के सामने मेज पर रख दिया। क्या हुआ, कुछ मालूम हुआ, तनवीर ने पूछा। मैंने कंप्यूटर फोल्डर बना दिया है, तुम एक नज़र इन तस्वीरों को देख लो, फिर बात करते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। और तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर कंप्यूटर उठाया और अपनी गोद में रखकर इमरान की इनलार्ज की हुई तस्वीरें देखने लगा। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ अपना सेल फोन उठाया और वो एक इंटरनेशनल नंबर प्रेस करना शुरू हो गया। नंबर प्रेस करके इसने कॉलिंग की ऑन की और फिर इसने सेल फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। यस रेडली क्लब, रब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक भारतीय और कख्त आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डैम बोल रहा हूँ, मुझे अपना कोई ऐसा नंबर दो जिस पर मैं तुमसे पर्सनल और पुरसुकून अंदाज में बात कर सकूं। इमरान ने दूसरी तरफ से रेड ली की आवाज पहचान कर कहा, प्रिंस ऑफ डैम, ओ एक मिनट में नंबर देता हूँ, दूसरी तरफ से रेड ली ने कहा। इसने भी शायद इमरान की आवाज पहचान ली थी। नंबर नोट करो, चल नमाबाद, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर रेड ली इसे एक नंबर बताने लगा जिसे इमरान ने जहन नशीन कर लिया। ओके, मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, इमरान ने कहा और इसने रब्ता खत्म कर दिया। मुझे तो इन तस्वीरों में कोई खास बात नजर नहीं आई, तनवीर ने सारी तस्वीरें देखकर इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम काक फिले को इस कदर नजदीक से देख चुके हो और तुमने ये भी कहा है कि तुम्हारी और इसकी मुतअद्दिद बार फाइट भी हुई थी, इसके बावजूद तुम्हें तस्वीरों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, क्या मतलब? तनवीर ने चौंक कर कहा और उसने फोल्डर की तस्वीरों को रिवर्स करके इन तस्वीरों को गौर से देखना शुरू कर दिया, जिसमें काफिले की लाशों के टुकड़े थे। तनवीर चंद लम्हे गौर से इन तस्वीरों को देखता रहा, फिर इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के साथ साथ नुमाया होते चले गए। ओहो, ये काफिले नहीं है, तनवीर ने कहा। अब समझ में आया कि इन लाशों के टुकड़े क्यों किए गए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लाशों के टुकड़े कद काट छुपाने के लिए किए गए थे, ताकि कोई ये ना जान सके कि लाशें काफिले की नहीं है, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, काफिले ने चारों लाशों के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए थे, ताकि तुम इसके चेहरे देखकर यही समझो कि एक नहीं बल्कि चार काफिले हलाक कर दिए गए हैं। इसने नहायत चलाकी का सबूत दिया है। इसने चार अफराद को हलाक करके इन पर अपना मेकअप कर दिया था, और चूंकि वो चारों अफराद इसके कद काट के नहीं थे, इसलिए इसने इनके टुकड़े कर दिए थे, ताकि तुम्हें ये शक ना हो कि वो काफिले नहीं हैं। इसने इन पर कोई ऐसा खास मेकअप भी कर दिया था, ताकि तुम इनके असली चेहरे ब्लू क्रॉस ग्लासेस से भी ना देख सको और ना डबल ग्लासेस डिजिटल कैमरे से। इसलिए इसने तुम्हारे पास मौजूद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था, इमरान ने कहा। लेकिन इसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुझे उलझाना ही चाहता था तो वो किसी एक लाश को भी अपना मेकअप करके इसकी लाश के भी टुकड़े कर सकता था। फिर चार लाशों का क्या मतलब हो सकता है, और फिर इसे ऐसा करने की जरूरत भी क्या थी? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। काफिले हकीकत में शैतानी दिमाग रखने वाला एजेंट है। इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। क्यों किया है, इसका हमें पता लगाना है, लेकिन इससे पहले मेरे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। अगर इसके यहाँ आने का मकसद मालूम हो जाए तो इसे यहाँ से ढूंढने का भी कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा, इमरान ने कहा। वो इस वर्कशॉप में जरूर जाएगा जहाँ इसकी कार ठीक होने के लिए आई हुई है। अगर हम वर्कशॉप की निगरानी करें तो हम इसे आसानी से दबोच सकते हैं, तनवीर ने कहा। नहीं, काफिले इतना आसान शिकार नहीं है। इसने तुम्हें भी जिंदा छोड़ दिया है और पीछे अपनी हम शक्ल चार लाशें भी छोड़ी हैं। वो इतना अहमक नहीं है कि इस कार के लिए वो वर्कशॉप का रुख करेगा, इमरान ने कहा। काफी कीमती कार है, क्या वो इस कार को वहीं छोड़ देगा, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमसे छुपने के लिए अगर वो दो कीमती कोठियां छोड़ सकता है तो एक कार इसके लिए क्या मायने रखती है, इमरान ने कहा, और तनवीर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है, तनवीर ने चंद लम्हे तौकीफ के बाद पूछा। अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा, और उसने सेल फोन पर रेड ली के वो नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो इसे रेड ली ने बताए थे। इमरान ने सेल फोन का स्पेशल सिस्टम ऑन कर लिया था, जिससे अब इसकी कॉल ना कहीं कैच की जा सकती थी और ना ही प्रेस की जा सकती थी। यस रेडली हेयर, रास्ता मिलते ही दूसरी तरफ से रेडली की आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डैम, इमरान ने कहा। यस सर, मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कॉल कर ली, वरना मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था, दूसरी तरफ से रेडली ने जवाब दिया, और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्योंकि खैरियत थी जो तुम मुझे कॉल करने वाले थे, इमरान ने कहा। अब तक तो खैरियत है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हारी रातों की नींद और दिन का सुकून जरूर उड़ने का चांस हो सकता है, دوسری طرف سے ریسلی نے کہا، کیا مطلب؟ عمران نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیلی بلیک ہارٹ ایجنسی کا ایک ڈیول مائنڈ ایجنٹ پاکستان میں آیا ہوا تھا؟ دوسری طرف سے ریسلی نے کہا، اور عمران یوں اچھلا جیسے اس کے سر پر بم زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا ہو۔ ریسلی کا تعلق اسرائیل سے ہی تھا، تل ابیب میں اس کا ایک بہت بڑا کلب تھا جہاں ریسلی ہر قسم کے مخصوص دھندے کرتا تھا۔ ان دھندوں کے ساتھ ساتھ وہ مقبری کا کام بھی کرتا تھا۔ اس کا نیٹ ورک پورے اسرائیل میں پھیلا ہوا تھا، جو نہ صرف اسرائیل کے اعلی احکام پر نظریں رکھتا تھا بلکہ اسرائیل کی بہت سی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بھی بہت سی خفیہ معلومات رکھتا تھا۔ گو کہ ریسلی یہودی نہیں تھا، لیکن وہ اسرائیل میں ایک کٹر یہودی بن کر ہی رہ رہا تھا، اور اس نے اسرائیل میں اپنا بے پناہ اثر و رسوخ بنا رکھا تھا۔ عمران نے اسرائیل میں ایک مشن کے دوران ریسلی کی اس کی چند دشمنوں سے جان بچائی تھی۔ اس وقت ریسلی اکیلا تھا اور اسے چاروں طرف سے 10 سے زائد مسلح افراد نے گھیر رکھا تھا۔ ان مسلح افراد نے ریسلی کو گولیاں مار دی تھی، جس سے ریسلی کی حالت انتہائی مخدوش ہو گئی تھی۔ عمران اسے شدید زخمی حالت میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اس نے نہ صرف خود ریسلی کا آپریشن کر کے اس کے جسم سے گولیاں نکال دی تھی، بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے اس نے ریسلی کو اپنا خون بھی دیا تھا جو اس کے ہی گروپ کا تھا، جس سے ریسلی کی جان بچ گئی تھی۔ اگر عمران بر وقت اس کا آپریشن نہ کرتا اور اسے اپنا خون نہ بہا دیتا تو ریسلی کی جان کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ جب ریسلی کو ہوش آیا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ عمران نے اس کا آپریشن کر کے اور اسے اپنا خون دے کر اس کی جان بچائی تھی، تو ریسلی عمران کا اس قدر احسان مند ہو گیا تھا کہ اس نے عمران کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا اور ساری زندگی اس کا احسان مند اور اس کا غلام بن کر رہنے کی قسم کھائی تھی۔ عمران کو بھی اس جیسے شخص کی اسرائیلی میں بہت ضرورت تھی، جو اسرائیل کا ہی باشندہ ہو اور اس کا اسرائیل میں اثر و رسوخ بھی ہو۔ ایسے شخص سے وہ مستقبل میں بہت سے کام لے سکتا تھا۔ اس نے ریسلی سے دوستی کر لی تھی اور ریسلی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سے دوستی نبھائے گا اور جان دینے کی حد تک اس کے کام آنے کی کوشش کرے گا۔ ریسلی کی مدد سے عمران اس سے رابطہ کر کے اسرائیلی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکتا تھا، اس لیے وہ اکثر اس سے رابطے میں رہتا تھا اور ریسلی اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اسی طرح بلیک ہارٹ ایجنسی اسرائیل کی ایک بہت بڑی فعال اور انتہائی خطرناک ایجنسی تھی، جس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ ایجنسی پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں اپنی کارروائیاں کرتی رہتی تھی۔ حال ہی میں اسی بلیک ہارٹ ایجنسی نے پاکستان میں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے کرائم ماسٹر اوسلو کساوا کو بھی بھیجا تھا تاکہ وہ عمران کو ہلاک کر دے، یا عمران اور اس کے ساتھی اسی کرائم ماسٹر کے چکروں میں بری طرح سے الجھ کر رہ جائے۔ بلیک ہارٹ ایجنسی نے کرائم ماسٹر اوسلو کساوا کے علاوہ پاکستان میں ایک کلر سینڈک ٹیک بھی بھیجا تھا، جو پاکستان میں بے پناہ تباہی اور ہلاکتوں کا مشن لایا تھا۔ اس کے لیے ظہیر احمد کا ایکشن اور سسپینس سے بھرپور ناول کرائم ماسٹر پڑھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا تھا اور کلر سینڈک کو کیفر کردار تک پہنچا کر ان کا مشن فلاپ کر دیا تھا۔ اوسلو کساوا اور کلر سینڈک کیس میں جولیا، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود نہیں تھے، وہ چونکہ ایک فارم مشن پر گئے ہوئے تھے، اس لیے اس کیس کے بارے میں تنویر، جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ वो चारों चूंकि हाल ही में वापस आए थे, इसलिए अभी तक किसी ने इस केस के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया था कि इनकी गैर मौजूदगी में पाकिशिया में क्या क्या हुआ था और वो किन उलझनों और परेशानियों से दो चार हो गए थे। जब सेक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप के चार नए मेंबरान ने इन चारों की जगह और इनका नाम इस्तेमाल करके काम किया था और वो चारों नए एजेंट क्राइम मास्टर और इसके साथी लड़की ब्लैक डोना के हाथों हलाक हो गए थे। जब सेक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान ने असली सफदर जूलिया तनवीर और कैप्टन शकील के हलाक होने का यकीन कर लिया था, तनवीर की बातें सुनकर इमरान के जहन में यही ख्याल आ रहा था कि शायद काफिले कलर सैंडिक का वो मिशन पूरा करने के लिए आया है जिसमें कलर सैंडिक का नाकाम हो गया था। रेडली ब्लैक हार्ट एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए इमरान को अचानक इसका ख्याल आ गया था कि वो रेडली से बात करके इससे पूछ सके कि ब्लैक हार्ट एजेंसी इन दिनों किन सरगर्मियों में मसरूफ है और इस एजेंसी का इस बात पर क्या रद्द अमल है कि पाकिस्तान में इस एजेंसी ने जिस क्राइम मास्टर और कलर सैंडिक भेजा था वो अपने मकासद में नाकाम हो गए थे और कलर सैंडिक खत्म हो गया था और क्राइम मास्टर भी हलाक हो गया था। इससे पहले कि इमरान रेडली से ये सब पूछता, रेडली ने खुद ही इस काफिले के बारे में बताना शुरू कर दिया था जिस पर इमरान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के साथ साथ उभर आए थे। आया हुआ था से तुम्हारी क्या मुराद है, इमरान ने चंद लम्हे तौकीफ के बाद रेडली से पूछा। वो इसलिए कि काफिले पाकिस्तान में एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मिशन मुकम्मल करके वापस इसराइल आ गया है, दूसरी तरफ से रेडली ने कहा और इमरान हैरत से दीदे घुमाकर रह गया। काफिले इसराइल वापस पहुंच गया है, ये कैसे हो सकता है, कब आया है वो इसराइल, इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसकी बात सुनकर तनवीर भी चौंक पड़ा था। वो आज सुबह ही इसराइल पहुंचा है और वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर है और वो अपनी कामयाबी का बाकायदा जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ से रेडली ने कहा और इमरान बेख्तियार अपनी खोपड़ी पर हाथ फेर कर रह गया। ओ तो काफिले यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फरार क्या मतलब, दूसरी तरफ से रेडली ने चौंक कर पूछा। तो इमरान ने इसे सारी बातें बता दी। हैरत है, काफिले तो वाकई इंतहाई बेरहम इंसान है, वो इस तरह तुम्हारे साथी को जिंदा कैसे छोड़ सकता है, वो भी ऐसे शख्स को जिसे वो अपना दुश्मन मानता हो, और वो चार लाशें, दूसरी तरफ से रेडली ने नहत हैरत भरे लहजे में कहा। लगता है कोई गहरा खेल खेला जा रहा है, बहरहाल तुम बताओ काफिले ने पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मिशन मुकम्मल किया है जिसके लिए वो बाकायदा जश्न मना रहा है, इमरान ने जबड़े भींचते हुए कहा। सॉरी, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ है कि वो पाकिस्तान में किस मिशन पर काम करने के लिए गया था, यहाँ तो बस यही बताया जा रहा है कि काकपिल्ले जो यहाँ ब्लैक हार्ट एजेंसी का डेविल माइंड समझा जाता है ने पाकिस्तान में जाकर खामोशी से और इंतहाई पुरसरार अंदाज में एक ऐसा मिशन मुकम्मल किया है जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये नॉवल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 3 में समाप्त फरमाएं।